नमस्तेभ्य ॐ नमस्तेभ्य ॐ नमस्तेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जेणिह कसाय पाहुड मणियणय मुज्जलं अनन्तत्थं गाहाहि विवरियं तं गुणहर भडारयं वंदे। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इस ग्रंथ की रचना की है। द्वितीय पुस्तक में द्वितीय अर्थाधिकार जो प्रकृति विभक्ति, उसमें मूल प्रकृति विभक्ति की बात चल रही है। आज महावीर स्वामी का जन्म दिवस है ना, जयंती, महावीर जयंती। 61 पृष्ठ पर आते हम, स्पर्शन की बात चल रही थी। स्पर्शन त्रिकाल विषय क्षेत्र को कहते हैं, जब क्षेत्र कहेंगे तो वर्तमान क्षेत्र, और जब स्पर्शन कहेंगे तो त्रिकाल विषयक। तो अतीत काल का और अनागत काल का एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए उसको अतीत और वर्तमान ऐसा भी कहते हैं। अभी हम आदेश यानी ये सामान्य से हमने देखा था, अब विशेष से मार्गणाओं में उसके बाद देखेंगे स्पर्शन के। यहाँ 61 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, आदेश की अपेक्षा नरक गति में, वो आदेश की बराबर दिख रहा है क्या? ऐसा ही सब जगह उनका ऐसा थोड़ा स्पष्ट ही है। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, तो कहते लोक के असंख्यात वे भाग और देशों ने छ बटे चौदह राजू प्रमाण। क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र स्पर्श किया है। दो बातें, दो विकल्प क्यों बताए हैं? एक वर्तमान काल का, क्यों कितने क्षेत्र में रहते हैं तो लोक के असंख्यात भाग में। हम कहेंगे अरे पूरे अधोलोक में रहते हैं ना, पूरे में कहाँ है, पृथ्वियों के अंदर उनके बिल है और दो दो पृथ्वियों के बीच में असंख्यात योजनाओं का अंतर है, तो उनका क्षेत्र अगर कैलकुलेट करेंगे तो लोक का असंख्यात भाग ही होता है। तो फिर ये स्पर्शन में 6/14 कैसा लिया, क्योंकि नरक अंतिम नीचे का नरक कहाँ तक है, 6 राजू, सातवीं जो पृथ्वी है वो 6 राजू नीचे है, तो 6 राजू तक अभी अलग अलग अपेक्षा से, जैसे मारणांतिक करके यहाँ के कोई महामत्स्य है और मारणांतिक समुदाय करके कहाँ तक करेगा, नीचे के नरक तक, सातवें नरक में जाने वाला, तो मारणांतिक की अपेक्षा भी अतीत काल ने पूरा ही अतीत काल है ना, अनादि से लेकर, तो वर्तमान में थोड़े ही जीव जाते होंगे, परंतु वहां अनादि काल से जो अनंत काल बीत गया है उनकी अपेक्षा लेंगे तो 6 राजू वाला सभी क्षेत्र उन्होंने व्याप्त किया है, ऐसा लेना उसका अर्थ। तो मारणांतिक है और उपपाद है, वहां से मरकर ऊपर आने वाले जीव, उनका भी जो उपपाद है वो इतना ऐसा लंबा फैला हुआ है, उसकी अपेक्षा भी ले सकते हैं। तीर्यंच गति तीर्यंच शुरू हुआ, उपपाद ने नरक में जन्मने वाले लेना, बरोबर आपने कहा, उपपाद में वो वहां से आने वाले नहीं लेना है, क्योंकि उनके तो तीर्यंच गति कहलाएगी, नरक में से मरकर यहाँ आने वाले तीर्यंच गति के जीव कहलाएंगे, और मरकर नरक में जाने वाले वो नरक गति के कहलाएंगे। तो वहां उपपाद है, पहले किसी ने मारणांतिक समुदात किया है, और फिर उपपाद में क्या है, दो दंड मान लेते हैं, तो पहला दंड खींच लेता है, और फिर दूसरा दंड पूरा ऊपर से नीचे तक वो फैले हुए रहते हैं, इसलिए 6/14 कहानियां। हाँ, नरक के मारणांतिक करके तिर्यंच में, और उपपाद में तिर्यंच, या अभी मनुष्य तो थोड़े ही होते हैं परंतु मेजोरिटी तिर्यंचों की है, तिर्यंच मरकर नरक में जाने वाले। पर वापस आने की बाल नहीं की हमने, मारणांतिक ने फैले हुए हैं, उसमें उसमें वापस आने की बात कहाँ की मैंने। हाँ मारणांतिक में, मारणांतिक तो नरक का होगा और उपपात तिर्यंच होगा, जैसे आपने कहा मारणांतिक समुदाय जीव करते हैं, वो समझाने के लिए उपपाद कितना होता है दंड उसको समझाने के लिए बताया। ये जो मैंने तिर्यंच मारणांतिक करके नरक में जन्मने वाला है, उस मारणांतिक का पहला दंड हाँ, वो दूसरा तीसरा तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो तीन दंड या तीन मोड़ जो है वो सूक्ष्म एक इंद्रियों में ही होते हैं, अन्य जीवों में नहीं होता। हाँ त्रस में तो दो मोड़ में ही काम चलेगा। फिर से देखो हम ये वाक्य फिर पढ़ते, बादर पृथ्वी सूक्ष्म की ली थी उन्होंने, पहले हमने धवला में पढ़ा था, पृथ्वी फैली है तो सूक्ष्म सभी जीव फैले हैं। बादर पृथ्वी का एक तीन मोड़ लेते हैं, परंतु एक इंद्रियों में ही होता है घटित, और उसमें भी धवला में तो हमने पढ़ा कि सूक्ष्म में ही होता है, वो ये पता नहीं चला ऐसा क्यों कहा था, अब यहाँ आएगी बात तो देखेंगे। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मुनि विभक्ति वाले जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक के असंख्यात विभाग, ये तो वर्तमान क्षेत्र बताया, और देशों ने 6/14 राजू प्रमाण क्षेत्र जो अभी हमने मारणांतिक के रूपपात की अपेक्षा देखा था, स्पर्श 14 राज्य जो त्रस नाली है उसके 6 भाग, क्योंकि मध्य लोक से 7वां नरक 6 राजू नीचे है, तो नारकियों की जनरल बात की ना, तो 6 राजू की बात करें, हर एक नरक की अलग अलग गिनाएंगे तो वो नरक जितने नीचे है उतने तक की बात करेंगे। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान कहना चाहिए, पहली पृथ्वी के लिए क्या है लोक का संख्या तोभा क्षेत्र के समान, दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक मुनि कर्म से युक्त जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, तो कहते हैं लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र, और दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा देशों ने 1/14 राजू, अभी जो पृथ्वी जितनी नीचे है 1/14 ने 1 राजू नीचे है, तो देशों ने क्यों किया प्रेरणा बिना आपको पता है बल। थोड़ा यानी कितना वात वाले को नहीं, पृथ्वी में से पृथ्वी का जो 1000 योजन नीचे छोड़ना है, क्योंकि नरक बिल नीचे तक तल तक नहीं होते ना, बीच में होते, पृथ्वी की जो मोटाई है उसके बीचों बीच नरकों के बिल होते, उसके जितने भी पटल हो गए उनके बीच में होते, नीचे 1000 योजन में वो बिल नहीं पाए जाते, तो उसको देशों ने कहा कुछ कम, तो कुछ कम 1/14 राजू। अब तीसरी पृथ्वी के लिए, तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा देशों ने 2/14 राजू, क्योंकि वो 2 राजू नीचे है, चौथी पृथ्वी की अपेक्षा देशों ने 3/14 राजू, 5वीं पृथ्वी की अपेक्षा देशों ने 4/14 राजू, और 6ठी पृथ्वी की अपेक्षा देशों ने 5/14 राजू, और 7वीं पृथ्वी की अपेक्षा देशों ने 6/14 राजू प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अभी इसी बात को समझाएंगे। नारकी सवाल ही नहीं पृथ्वी खाई क्यों, क्योंकि वो तो संगी पंच, ये जो चर्चा चल रही थी तीन मोड़ किन जीवों में होते हैं, विशेषार्थ सामान्य नारकियों का वर्तमान कालीन स्पर्शन कहते समय वर्तमानकालीन स्पर्शन यानी वर्तमान का क्षेत्र, कितना क्षेत्र रोकते हैं स्वस्थान स्वस्थान आदि की अपेक्षा। पहले नरक के नारकियों का प्रमाण प्रधान है, 7 नरक में जितने नारकी है उसमें पहले नरक के नारकियों की मेजोरिटी है, संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी से 7वीं नरक के टोटल है उससे भी ज्यादा है इनके, क्योंकि यहाँ 6 नारकियों से, यहाँ लिखा देखो बीच में के शब्द डालना, क्योंकि यहाँ 6 नरकों के नारकियों से असंख्यात गुणे नारकी पाए जाते हैं। दूसरे से 7वें नरक के नारकियों की टोटल करना, जोड़ देना, क्योंकि हर एक नरक में असंख्यात असंख्यात जीव है, उनकी जितनी टोटल होगी उससे भी असंख्यात गुणे जीव पहले नरक में है। यद्यपि 7वें नरक के नारकियों की अवगाहना पहले नरक के नारकियों की अवगाहना से बहुत बड़ी है, फिर भी यानी क्षेत्र निकालते समय उनका उनके अवगाहना को भी उसमें लेना, इतने नंबर ऑफ नारकी और उसको गुना करना उनकी अवगाहना से, फिर भी उसकी यहाँ विवक्षा नहीं की है, कितना नीचे है उस अपेक्षा से, कितना क्षेत्र में रहते उसकी बात की है। क्योंकि क्षेत्र लाते समय 7वें नरक के नारकियों की संख्या को उनको अवगाहना से गुणित करने पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी वहां के जीवों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय वहां की अवगाहना, उससे उसकी अपेक्षा पहले नरक के नारकियों की संख्या को उनकी अवगाहना से गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है। मैंने तो वहां 100 है और यहाँ 100,000 है, तो 100 को वहां की जो अवगाहना है उससे गुणा करेंगे और यहाँ की संख्या से यहाँ के वो 100,000 को गुणा करेंगे तो भी यहाँ का क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। लाख वालों का पहले नरक के नारकियों के स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शन का कथन करने पर इन स्थानों को प्राप्त नारकियों की जितनी राशियां हो उन्हें प्रमाण घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमात्र अवगाहना से गुणित कर देने पर क्या कहना चाहते हैं? पहले उनकी संख्या निकालते हैं स्वस्थान में, यानी सभी टोटल नारकी कितने हैं उसको कहेंगे स्वस्थान, उसका जो संख्यात्व भाग या जो कोई है उतने विहार करने वाले होंगे, उनकी वो विशिष्ट राशि निकालना, विहार करने वाले कितने होंगे। फिर उसके बाद वेदना समुद्घात करने वाले नारकी कितने होंगे, कषाय समुद्घात करने वाले कितने होंगे और वैकरिक समुद्घात करने वाले कितने होंगे, इनकी अलग अलग संख्या निकालना, उसको कहेंगे राशि। उसको किससे गुणा करना है तो अवगाहना से, तो अवगाहना कितनी है प्रमाण घनांगुल, कहा घनांगुल नहीं कहा अकेला, प्रमाण घनांगुल। जैसे अंगुल जो कहलाते हैं, 3 प्रकार के अंगुल होते हैं, एक सूचंगुल, नहीं वो सूचंगुल के 3 भेद है, सूचंगुल कहो या अंगुल कहो, कौन सी राशि में आता है मालूम है? विरूप वर्गधारा में, हमने देखा था पल्ले जितने स्थान पर है उतने आगे स्थान चले जाओ तो अंगुल का प्रमाण आता है, अंगुल कहो या सूचंगुल कहो एक ही बात है। तो ये जो अंगुल निकालते हैं वो कौन सा अंगुल है? नहीं, उसका नाम क्या है उसका? चक्रवर्ती का अंगुल, वो तो प्रमाण अंगुल हो गया। यहाँ जो सूचंगुल कहते वो कौन सा अंगुल है? बहुत अच्छा, उच्छेद अंगुल कैसे? तो हमने देखा ना 8 गुना 8 गुना 8 गुना अनेक बातें हमने देखी थी, तो उसमें से लास्ट में जो यव देखा था, तो 8 यव का जो एक प्रमाण हो जाएगा उसको कहेंगे एक अंगुल। यहाँ तो एक अंगुल है ना, उसमें जितने प्रदेश है उन प्रदेशों की संख्या को अंगुल कहते हैं, तो ये जो अंगुल है उसको कहेंगे उच्छेद अंगुल। तो इससे जो प्रमाण अंगुल है वो 500 गुना है। तो प्रमाण अंगुल किसे कहना? तो अवसर्पिणी का जो प्रथम चक्रवर्ती है हमारे यहाँ भी भरत चक्रवर्ती, उसका जो अंगुल का प्रमाण है उसको यहाँ प्रमाण अंगुल कहते हैं, वो उच्छेद अंगुल से 500 गुना बड़ा होता है। आत्मांगुल किसे कहना, हम देखते हैं ना चौथे काल के आदि से लेकर अंत तक अवगाहना घटती चली जाती है, भोग भूमि में भी उससे भी ज्यादा अवगाहना थी। तो जिसकी जितनी अवगाहना है उसका अपने अंगुल का जो प्रमाण है उसको आत्मांगुल कहेंगे। वो तो वेरिएबल है, जैसे नेमिनाथ के काल में उसका प्रमाण अलग होगा और अभी महावीर के काल में अलग, अभी हमारे काल में अलग, पांचवें काल के अंत में उसका प्रमाण अलग हो जाएगा, वो उसको आत्मांगुल कहेंगे। तो ये जो तीन भेद है, उच्छेदांगुल, आत्मांगुल और प्रमाणांगुल, आत्मांगुल की तो बात ही नहीं है। हमेशा जब अंगुल की बात आएगी या तो सूक्ष्मांगुल की बात होगी या प्रमाणांगुल की। तो यहां बता चुके प्रमाणांगुल, प्रमाणांगुल से जो आता है ऐसा जो घनांगुल, घनांगुल किसे कहना, अंगुल गुना अंगुल गुना अंगुल उसको घनांगुल कहते हैं। तो ये प्रमाण घनांगुल की बात है। तो ऐसा जो प्रमाण घनांगुल है उसके संख्यात्वे भाग मात्र अवगाहना है। देखो देखो वहां हम जब असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी देखे वहां काल का प्रमाण देख रहे हैं, अब यहाँ अवगाहना का प्रमाण लिख रहे हैं। वो सूक्ष्मांगुल है, वो सादा उच्छेदांगुल। नहीं नहीं यहाँ घनांगुल, ये तो मेजॉरिटी एवरेज निकाला ना, घनांगुल का संख्यात्वा भाग। जब घनांगुल के संख्यात्वा भाग कहेंगे, ये तो प्रमाण लिखा ना, प्रमाण घनांगुल के संख्यात्व भाग। उच्छेदांगुल में नहीं है, यहाँ लिखा है ना प्रमाण। हाँ देवों की और नारकियों की जब कहते हैं तो वहां तो घनांगुल का संख्यात्वा भाग ऐसा ही आता है उसमें। हाँ यहाँ ही लिखा है प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग। हाँ उतनी होती है और बाकी की जो है कम है, तो उसका संख्यात्वा भाग हो गया ना, इसलिए घनांगुल का संख्यात्वा भाग हो गया। अन्य नारकियों की कम है उस अपेक्षा से, उतने अवगाहना से गुणित कर देने पर विवक्षित पद की अपेक्षा। विवक्षित पद कौन कौन से हमने देखे पद, यहाँ जो कहा है स्वस्थान स्वस्थान वगैरह, ये पद कहलाते हैं। हाँ तो विवक्षित पद की अपेक्षा अपने अपने क्षेत्र का प्रमाण आ जाता है। क्या कहा पहले नारकियों की राशि, यहाँ जो पद है स्वस्थान है, विहारवत है, वेदना है, कषाय है और वैक्रियक है। मारणांतिक उपपात की यहाँ बात नहीं की है। तो इनमें उनकी जो अवगाहना है उससे गुणा करना, तो उनका अपना अपना क्षेत्र आ जाएगा, यानी उस पद की अपेक्षा क्षेत्र का प्रमाण निकलेगा। जैसे स्वस्थान की अपेक्षा हमने कोई प्रमाण निकाला, नारकी है 1,00,000 और उनकी अवगाहना विशिष्ट एक्स है, तो 1,00,000 आ गए ना संख्या। अभी स्वस्थान की अपेक्षा निकाले, जब वेदना समुद्घात करते हैं तो 3 गुना तक बढ़ जाती है, 3 × 3 9 गुना हो जाती है ना, वहां पर 9² इतनी बढ़ जाएगी, तो उसका क्षेत्र भी उतना बढ़ेगा। कषाय का भी वो 3 गुना होता है। इस तरह से वो उस विशिष्ट पद की अपेक्षा क्षेत्र का प्रमाण कैसा निकालना उसकी बात है। आपका कहना है 500 धनुष उसकी हाइट है तो घनांगुल का संख्यात्वा भाग कैसा हो जाएगा, ऐसा कहना है ना। तो वहां ऐसा है ना, एक तो यहाँ तो प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग कहा है और वहां जो मापेंगे वो उच्छेदांगुल से मापेंगे। हाँ तो वो इसका संख्यात्वा भाग हो गया ना, 500वां भाग समझो आप। हाँ अकेले सभी 500 धनुष वाले तो है ही नहीं है। हाँ बराबर है। हाँ घनांगुल निकालना है। देखो देखो 500 धनुष तो हाइट आपकी है, हाँ और उसकी उसका पूरा 3 डायमेंशन कितने हो गए? आपकी हाइट 6 फुट है और ऐसा भी 1 फुट है, और नहीं तो पूरा घनांग बोल तो नहीं हो रहा है ना। हाँ देखो, हाँ स्पेस ऑक्यूपाइड, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, सभी नारकियों का एवरेज निकाला है उन्होंने। हमने देखा ना पहले नरक में मेजॉरिटी संख्या है, एवरेज नारकी की कितनी है उसकी ही बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमें सभी नारकियों का वहां निकालना है क्षेत्र कितना है, इसलिए उसकी एवरेज उन्होंने क्या बताया, प्रमाण घनांगुल का संख्यात्व भाग। वो तो आगे की बात है। यहाँ कहाँ गए, जितनी राशि, हाँ क्षेत्र जिसे अपने अपने क्षेत्र का प्रमाण आता है, वहां तक हमने पढ़ा था, जिसे लोक से भाजित करने पर, लोक से का लोक को भाजित करने पर, लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्शन होता है, वो क्षेत्र जो है वो कितना है, लोक से भाग देना है, लोक को उससे भाग देना, लोक को भाजे, लोक का असंख्यात भाग है ना वो, देखो 100 संख्या 1000 का कितवा भाग है, तो 10वां भाग है, तो 1000 को 100 से भाग देंगे कि 100 को 1000 से, हाँ दस टाइम्स हो, अच्छा लोक का असंख्यात्व भाग 1000 को 10 से 100 से भाग दिया तो 10 आ गए ना, तो लोक का 10वां भाग हो जाएगा ना, 100 है वो कैसा 10 गुना हो जाएगा, 100 है वो तो 1000 गुना, 100 हमें कितवा भाग है निकालना है, भाजित करने पर क्या आएगा, 1/lakh आएगा ना, तो 1 lakh भाग नहीं कहेंगे, लाखवा भाग कहेंगे, तो ये इस वाक्य में जरा कुछ त्रुटि है। हाँ ठीक है, हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, लोक से भाजित करने पर लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्शन होता है, वो 1 का असंख्यात भाग हो जाएगा वहां पर लोक से भाजित करेंगे, तो नहीं समझे, जब हम 100 को 1000 से भाग देते हैं तो 1 का 10वां भाग आया, 1000 का 10वां भाग कहाँ आया, ठीक है, यानी समझना कैसे क्या करना है, नहीं समझे, जाने दो, अच्छा है, तो 1 का 10वां भाग आया, 100 का 10वां भाग कहाँ आया, हाँ यानी वो कितवा भाग है वो समझने के लिए हम कह सकते हैं, परंतु एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो जितना क्षेत्र निकाला अवगाहना का, असंख्यात आएंगे, नहीं असंख्यात नहीं, उल्टा 1 का असंख्यात भाग आएगा, ऐसा क्या कहते हैं, असंख्यात आएगा, तो वो जो असंख्यात है उतना लोक को भाग देना है हमको, उस असंख्यात से लोक को भाग देना है, संख्या तो उतनी आई कहीं भी करेंगे तो, इतना विशेष है कि वेदना और कषाय समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र लाते समय मूल अवगाहना को 9 गुनी, हमने देखा था ना, ये हाइट वाइज बढ़ती नहीं है, वेदना समुद्घात में हाइट में कोई वहाँ समुद्घात यानी प्रदेश फैलते नहीं है, तो कैसे फैलते हैं चौड़ाई में और ऐसे पौड़ाई में, तो यहाँ से तीन गुना और ऐसे आगे पीछे तीन गुना, तो तीन त्रिक नौ गुना बढ़ते हैं। नहीं, वेदना में और कषाय में पूरे इतने तक फैलेंगे ये कोई बात नहीं है, अधिक से अधिक। किसी का एक प्रदेश ही शरीर के अवगाहना से बाहर आएगा, किसी के दो प्रदेश ही बाहर आएंगे, तो कहाँ तक आते हैं, तो नौ गुने तक आ सकते हैं। और वैक्रियक समुदाय की अपेक्षा क्षेत्र लाते समय ये आपको जो कुछ अटपटा लग रहा है ना क्षेत्र और स्पर्शन का, अभी आप सबके पास समय ज्ञान चंद्रिका है, उसमें लेशा मार्गणा निकालना और उसमें से क्षेत्र और स्पर्शन पढ़ना, तो ये जो कोई इसके जो उसके संबंध में कैसा निकालना उसका संख्यात्वाभाग उसको कैसे गुणा करना और कैसा उसका कैलकुलेशन करना, बहुत विस्तार से वर्णन है उसमें। तो वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र लाते समय मूल अवगाहना को संख्यात गुणी कर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्रियक समय विक्रिया करता है, नारकियों में विक्रिया कैसी होती है, अपृथक होती है, शरीर को ही बड़ा छोटा कर देते हैं या अन्य अन्य आकार का बना देते हैं, परंतु देवों जैसा नया दूसरा विक्रिया से शरीर बनाकर यहाँ आते हैं मध्य लोक में आदि, तो ऐसा नहीं करते, तो इसलिए संख्यात गुणा कर देते हैं उसको, संख्यात गुणा। तथा इन स्थानों को प्राप्त जीवों की संख्या भी मूल राशि के संख्यात भाग प्रमाण होती है। जितने स्वस्थान वाले हैं वो सबके सब विहार करते नहीं है, विहार में से सबके सब उनको वेदना समुद्घात नहीं होता, सबको कषाय नहीं होता और सबके आगे विक्रिया नहीं होती, तो वो संख्यात्वा संख्यात्वा भाग आगे आगे, मूल राशि का संख्यात्वा भाग वो विहारवत में, विहारवत का संख्यात्वा भाग वो वेदना में, वेदना के संख्यात्वा भाग कषाय में, कषाय का संख्यात्वा भाग विक्रिया में, इस तरह उसका प्रपोर्शन निकालते हैं। अर्थात जहां जितनी राशि हो उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण जीव विहार वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात करते हैं, अधिक नहीं। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र लाते समय भी पहले नरक के नारकियों की संख्या की अपेक्षा ही उसे लाना चाहिए। मारणांतिक करने वालों की संख्या निकालना है तो मेजॉरिटी संख्या पहले नरक में है, तो उनकी अपेक्षा से संख्या गिनेंगे, क्योंकि यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव शेष छहों नारकों में मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि वहाँ जीव ही अधिक है, तो उनमें मरने वाले भी अधिक हो गए और मारणांतिक समुद्घात करने वाले भी अधिक हो गए। पर हाँ अच्छा आयु कम है इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे, बराबर है, पर उनके विग्रह की अपेक्षा क्षेत्र की लंबाई राजू के असंख्यात भाग मात्र ही पाई जाती है। ये क्या नुकसान क्या होगा, मारणांतिक समुद्घात करके कहाँ तक करेंगे, पहले नरक के नारके मरकर कहाँ आएंगे, तीर्यंच में मध्यलोक में आएंगे, तो मध्यलोक कितना ऊपर है, क्या लिखा राजू का असंख्यात्वा भाग लाख योजन तक ही है ना, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी एक राजू तक है, नहीं समझे, एक लाख योजन में एक लाख 80,000 80,000 नीचे की अबहुल भाग है, तो वहां जो है वहां से लाख योजन भी अगर हमने देख बीच में अंतर कितना लाख योजन है ना, वही तो बताया, नीचे 80,000 में नरक है और उसके ऊपर पृथ्वी कितनी मोटी है, एक लाख योजन की, अंतर हमें गिनना है, वहां कौन रहते हैं उसकी बात नहीं है, वो मरण करके ऊपर आएंगे तो 80,000 में से 1,80,000 पूरे भी ले लो ना, नीचे का 1,000 जाने दो, नीचे का पटल है वहां से इतने तो ऊपर आएंगे, तो राजू का कितवा भाग है, वो असंख्यात्वा भाग है, तो मारणांतिक करके ऊपर आते हैं तो उसके क्षेत्र की ऐसी हाइट कितनी हो जाएगी, राजू का असंख्यात्वा भाग, तो उनके विग्रह की अपेक्षा, विग्रह ने ये मोड़ करके जो ऊपर, अभी मारणांतिक में भी विग्रह है ना, दंड, ऐसे पहला दंड दूसरा, पहले मान लेते आड़े जाएंगे फिर ऊपर जहां जन्म लेना है वहां जाएंगे, तो जब जो जिसको कहते ना नीचे वर्टिकल जो है ऊर्ध्व ऐसा उसका जो दंड होगा वो कितना है, राजू का असंख्यात्व भाग, कितना नीचे से वो ऊपर आएंगे राजू के असंख्यात्व भाग से। मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की राशि रुजु गति और विग्रह गति की अपेक्षा दो प्रकार की होती है। मारणांतिक समुद्घात करने वाले हैं वो बिना मोड़ वाले भी कर सकते हैं और विग्रह ने मोड़ वाले भी हो सकते हैं। तो जो टोटल मारणांतिक वाले हैं उसमें रुजु गति वालों को माइनस तो नहीं कह सकते हम, दो प्रकार के जीव होते इतना तो कह सकते हैं। उनमें से यहां विग्रह की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात करने वाले राशि ही विवक्षित है, क्योंकि इसके क्षेत्र की लंबाई रुजुगति की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव के क्षेत्र की लंबाई की अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों? वो क्षेत्र अधिक फैला है ना, जो मोड़ लेके जाता है तो उसका क्षेत्र हमको गिनना है, ऊपर कितना है वो नहीं गिनना है। मारणांतिक में वो एक मोड़ भी लेके जाता है, विग्रह का अर्थ ही मोड़ होता है। हाँ। देखो नरक में से ये ऊपर मध्य लोक में आना है, कोई सीधे जहां मरते हैं वहीं से ऊपर आएंगे, तो उनका मारणांतिक जो है वो जब हमको गिनना है तो जितना ये क्षेत्र है उसको ही हमको गिनना है, एक सिंगल लाइन में इतनी जी लेंथ है, तो उस जो हमने क्षेत्र निकाला था नारकियों की संख्या गुना उनकी अवगाहना उसको इससे गुणा करेंगे तो क्षेत्र आएगा। ये तो रुजुगति वाले मारणांतिक हो गए। अब कोई जो है उनको ऊपर उत्पन्न होना है तो यहाँ है, फिर उनका यहाँ जन्म स्थान है, पहले ऐसे आड़े आएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे तो एक विग्रह हो जाएगा उनका, तो उनका क्षेत्र अगर हमको काउंट करना है तो दोनों ही दंडों को हमको लेना पड़ेगा। और भी हो सकता है अंदर के भाग में है तो और एक भी उनको मोड़ लेना पड़ेगा। तो विग्रह वालों के लिए ये जितने उनके जो जितना उनको जाना है वो सबको उसमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये लोक का असंख्या तो भाग है और यहाँ भी जितना है उस वो आधे राजू तक भी जा, हाँ दो मोड़, दो ही मोड़ हो सकते अधिक तो नहीं। और ऐसा आड़ा अगर स्वयंभू रमुण में यहाँ का नारकी है और यहाँ जन्मने वाला है तो उसका वो और लंबा हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये मारणांतिक का क्षेत्र बढ़ेगा, विग्रह वालों में मारणांतिक का क्षेत्र बढ़ेगा, रुजुगति वालों में छोटा है क्षेत्र और विग्रह करके जाने वालों में वो बढ़ जाता है। नहीं कैसे भी जाएंगे तो भी क्षेत्र उतना ही आएगा। तीरियंचो में ऐसा आता है पहले आड़े जाते हैं और फिर उधर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तीरियंचो में तो हमने देखा है। अब नारकियों में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, पर पहले हमने देखा था कि पहले आड़े करके फिर ऊपर या नीचे जाना होता है उनका, तीरियंचो में तो हमने ऐसा ही देखा था। मारणांतिक का जितना जितनी दूरी होगी हाँ उतना वो उसको क्षेत्र कहेंगे। स्पर्श में तो पूरा पूरा ही लेना पड़ेगा, जितने राजू तक नीचे है वो घन यानी एक राजू बाय एक राजू और उतने नीचे उसको स्पर्शन में लेना है, क्योंकि अनादि से कितने नारकी कहाँ कहाँ गए हैं। हाँ वर्तमान में अगर क्षेत्र नापना है तो उसको मारणांतिक के दंड से मल्टीप्लाई करना है। हाँ आपका प्रश्न है जब मरण होता है तो उसके साथ साथ वेदना और कषाय भी हो सकते हैं। हाँ तो वेदना कषाय उसका तो अवगाहना तो दोनों मिलकर कुछ बढ़ने वाली नहीं है, तो एक ही कुछ होगा ना, तो वेदना करी की उसने वेदना वाले हैं तो तिगुणा यानी नौ गुना हो गया, और नौ गुना के साथ मारणांतिक किया, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके और ज्यादा क्षेत्र बढ़ेगा। पहले अवगाहना के साथ उसने मारणांतिक किया था, अब उसकी अवगाहना 9 गुना बढ़ी और इतनी अवगाहना के साथ उसने मारणांतिक किया तो उसका क्षेत्र और बढ़ेगा। वेदना और मारणांतिक हो सकते हैं, मारणांतिक समुद्रात की अपेक्षा। ये लिखे हैं, ये हमने विग्रह गति की अपेक्षा दो प्रकार की होती है, उनमें भी यहाँ विग्रह की अपेक्षा मारणांतिक समुद्रात करने वाले राशि ही विवक्षित है, क्योंकि इसके क्षेत्र की लंबाई रुजु गति की अपेक्षा मारणांतिक समुद्रात करने वाले जीव के क्षेत्र की लंबाई की अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है। एक समय में जितने जीव विग्रह गति से अन्य पर्याय में जाते हैं, ये जो रुजु गति जाते हैं उसको अविग्रह वाले कहते हैं, ये विग्रह वाले, उनके असंख्यात वे बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं। यहां तो यहां विग्रह गति यानी मरकर अन्य गति में जाना इतना ही लिया है, क्या कहना, यानी जितने जीव विग्रह गति में है, यानी जितने जीव मरते हैं उनके असंख्यात वे बहुभाग, असंख्यात बहुभाग हो, मारणांतिक करने वाले जीव कितने, असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो असंख्यात वह भाग नहीं करते, असंख्यात बहुभाग प्रमाण मारणांतिक करते हैं, इसलिए इस राशि को आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण उपक्रमण काल से कुनित कर देने पर, ये उपक्रमण क्या कर, लगातार जन्मने का समय, उसको उपक्रमण काल कहते हैं। एक जीव, दूसरा जीव, तीसरा जीव, ऐसे तो लगातार निरंतर तो अनंत काल तक नहीं होता है, नारकियों में भी मरकर यहाँ आएंगे, मध्यलोक में जन्मेंगे, तो भी निरंतर कंटिन्यूस थोड़े ही जन्मने वाले, बीच में मरण तो हर समय नहीं होगा नारकियों का, जैसे केंद्रीय में हर समय कोई ना कोई मरने वाले है, वैसे नारकियों में तो नहीं हो, तो लगातार उपजते रहे, उपक्रमण काले ने उपजना, हाँ, तो वो अवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक, यानी असंख्यात है ना उसमें भी समय, अवली में कितने समय है, जघन्य युक्त असंख्यात, उसका असंख्यात भाग भी असंख्यात होता है, कौन सा असंख्यात होगा, परिता संख्यात का कोई एक भेद होगा ना, कोई तो भेद होगा, परिता संख्यात का कोई भेद होगा, वह जघन्य है, मध्यम है, उत्कृष्ट है, उसकी बात नहीं, परंतु वो उसका भेद है। तो यहाँ कहते हैं इन्हें इतने समयों तक लगातार कोई ना कोई मरता है, यहाँ तो सामान्य कथन किए, विग्रह गति में जो जाते हैं मरकर जीव, उसके असंख्यात वे भाग बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक करते हैं, तो एक समय में, दो समय में, तीन समय में ऐसे करते रहे, तो उसका निरंतर उपक्रमण काल जो है, तो वो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण उपक्रमण काल से गुणित कर देने पर मारणांतिक समुदात करने वाली जीव राशि का प्रमाण आ जाता है। ये उससे क्यों गुणित करना, अवगाहना, क्योंकि जो एक समय में नहीं करते मारणांतिक, पहले एक जीव ने मारणांतिक किया तो उसके प्रदेश फैले हैं, दूसरे समय ने, दूसरे अनेक जीवों ने किया उनके भी प्रदेश फैल कर रहे हैं, तीसरे समय में और अनेक जीवों ने किया उसके भी प्रदेश फैल कर रहे हैं, जैसे अन्य समुद्घातों में कुछ वहाँ कम लिमिट होती है ना, जैसे वैसे यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वालों में भी लगा वो प्रदेश फैले हुए रहते हैं, तो इसलिए उपक्रमण काल का जो समय है उतने काल तक इन सबका मिलकर वहाँ मारणांतिक समुद्घात का प्रमाण निकालना है, वो कुछ एक दो समय के लिए नहीं होता है मारणांतिक समुद्घात, हाँ? नहीं, यहाँ तो जनरल बात कर रहे हैं, पहले में पहले कि विग्रह गति में जाने वालों में से असंख्यात बहुभाग प्रमाण मारणांतिक करते हैं, और मारणांतिक करते तो लगातार कोई ना कोई करता रहेगा, पहले जीव के भी प्रदेश फैले हैं और दूसरे भी जीव के फैले हैं, इसलिए उन सबको मल्टीप्लाई करना है, उतने क्षेत्र कैसा निकालना है ये यहाँ कथन कर रहे हैं। पुनः इसे राजू के असंख्य, अभी यहाँ नारकियों की संख्या से गुणा करेंगे, ये नारकियों में बात बताई उन्होंने, वो लगातार मरते रहेंगे नारकी, तो भी कितने, तो आवली के असंख्यातवें भाग, आवली कितनी छोटी मालूम है हमें, तो इतने लगातार मरेंगे और मरणांतिक करेंगे और फिर उनकी अवगाहना एक साथ हम टोटल निकाल सकते हैं। पुनः इसे राजू के असंख्यातवें भाग प्रमाण लंबे और अपनी अवगाहना से नौ गुणे प्रतर रूप क्षेत्र से गुणित करने पर, ये नौ गुणे क्यों किया आपने जो पूछा था ना वेदना समुद्घात, तो उससे नौ गुणा हो जाता है, उससे गुणा कर देने पर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शन का प्रमाण आ जाता है। जो लोक से भाजित, हाँ कौन से पहले लाइन में, जीव राशि की नहीं, मारणांतिक करने की, मारणांतिक करने वाले जो है उनकी संख्या बताएं। जो लोक से भाजित करने पर लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। उपपाद की अपेक्षा स्पर्शन लाते समय दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा लाना चाहिए। उपपाद ने भी वहां जन्मने वाले नारकियों में जन्मने वाले, तो वो भी वहां से नीचे तक फैले हुए इसे लेना है। उपपाद में प्रदेश हमको अवगाहना निकाली ना, मरकर वहां उत्पन्न होने वाले और उसमें जो उपपाद दंड है वो लंबा होगा, इसलिए दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा वो कितना लंबा होगा, एक राज्य जितना है ना, थोड़ा कम है परंतु एक राज्य जितना वो प्रदेश फैले रहेंगे। एक समय में उपपाद को प्राप्त होने वाले जीवों के प्रमाण को एक राजू लंबे और तिरियंचों की अवगाहना से नौ गुणे प्रतर रूप क्षेत्र से गुणित कर देने पर, तिरियंचों की अवगाहना जो बड़ी बड़ी है वो उसको लेना है क्योंकि हमको मैक्सिमम क्षेत्र निकालना है और वहां जाने वाले मेजॉरिटी तो तिरियंच होंगे जो सारे फैले हैं स्वयं ब्रह्मण समुद्रों में, क्योंकि नरक में जाने वाले बीच वाले समुद्रों के नहीं जाएंगे, भोग भूमि के है वो तो द्वीप में चले जाएंगे, तो ढाई द्वीप के अंदर वाले जो कर्म भूमि के है या बाहर पूरे स्वयं ब्रह्मण द्वीप और समुद्र, आउटर पार्ट ऑफ द्वीप, आधा द्वीप और पूरा समुद्र और चतुष्कोण बाकी के, ये सब मालूम है ना संडिल क्षेत्र कहते उसको। स्वयं ब्रह्मण समुद्र तो गोल है और जो त्रसनाली है वो तो राजू राजू गुना राजू है, तो गोल कोई चौकोर करो उसमें गोल आप निकालो, हाँ टाइल में वो गोल है ना तो ये चौरस है, जैसे अभी इसका कितना है एक फुट है हम कहते हैं, तो उसमें एक फुट व्यास वाला हमको सर्कल निकालना है, गोल करना है, तो चहुबाजू चार कोण रह जाते हैं। ये चतुष्कोण जो है वहां पर भूमि, वहां स्थंडिल क्षेत्र कहते हैं और वहां भी तीर्यंच है, ये कर्म भूमि है पूरी वहां पर, और हमें इतना सा दिखता है वो नहीं, इतने उतने प्रमाण में कितना बड़ा क्षेत्र है वो भी अरे साढ़े बारह करोड़ घन योजना वाले ऐसे तो असंख्यात असंख्यात मत्स्य तो उसमें है समुद्र में है। हाँ। और बाकी जो अन्य भी तीर्यंच होगी वहां, हाँ यानी जो स्थलचर जो है ऐसे भी वहां बहुत सारे हो गए। देखो क्या कहा, उपपाद की अपेक्षा, उपपाद ने वहां का जीव मरा और नरक में जन्म लेने वाला है तो उसके भी प्रदेश ऐसे फैले हैं, यानी वो नीचे आ रहे हैं ना विग्रह गति में उसने आ रहा है, तो पहले समय में कितने प्रदेश फैले हैं जहां जन्म लेना है वहां तक, एक एक समय में जाता है कोई जीव और कोई विग्रह करके जाता है तो उसके दो समय होते हैं, तो इस तरह से उसको लेना है। उपपाद की अपेक्षा स्पर्शन लाते समय दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा लाना चाहिए। एक समय में उपपाद को प्राप्त होने वाले जीवों के प्रमाण को एक राजू लंबे और तिरियंचों की अवगाहना से नौ गुणे प्रतर रूप क्षेत्र से गुणित करने, प्रतर यानी वो स्क्वेयर रूप, उपपाद की अपेक्षा स्पर्शन आ जाता है। जो लोक से भाजित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। यह जो ऊपर भिन्न भिन्न नरकों की प्रधानता से स्पर्शन कहा गया है, इसमें शेष नारकियों के स्पर्शन के मिला देने पर भी वह लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होता है। जहां मेजोरिटी है उस अपेक्षा से लेते हैं, यहां भी अरे पहले नरक में ज्यादा नारकी है तो फिर दूसरे नरक को क्यों लिया, उपपाद वहां एक राजू लंबा हो जाता है इसलिए उसको लिया, और नीचे के नारकों की अपेक्षा दूसरे नरक में ज्यादा हो गई जी, तो जहां मेजोरिटी होती है उसका क्षेत्र लिया जाता है। इसी प्रकार अतीत काल की अपेक्षा, ये तो वर्तमान काल की एक समय के उपपाद में एक समय लेना है, और मारणांतिक में आवली का असंख्या तो भाग प्रमाण काल में जितने संचित जीव है उसको लिया था, ख्याल है ना। उपपाद तो एक समय के लिए है तो वो एक समय के लिए ही घटित होगा, भले निरंतर अलग अलग जीव जन्मते रहेंगे फिर भी किसी एक समय में उपपाद करने वाले जीवों की संख्या लेना है, और मारणांतिक में एक समय में करते तो भले एक समय में परंतु वो पड़े रहते प्रदेश, तो अभी वर्तमान समय में किसी ने 10 समय पहले किया हुआ मारणांतिक अभी चल रहा है, किसी ने 9 समय पहले किया हुआ चल रहा है, किसी ने अभी अभी इस समय में किया है, तो सभी की टोटल गिनाएंगे वहां पर। तो मारणांतिक समुद्घात में तो वहां आवली के असंख्यात भाग प्रमाण समयों से गुणा किया था, उपपाद में एक समय वाला ही लेना है। और अतीत काल की अपेक्षा वहां से वो पूरा क्षेत्र लेना, वहां तक हमने एक राजू नीचे लिया तो एक राजू गुना एक राजू गुना एक राजू इतना वो पूरा घनवरूप क्षेत्रफल हो जाएगा। जब वर्तमान कहते हैं तो एक समय घटित होगा, नहीं परंतु वो एक समय में उसका ट्रैवल वहां तक होगा। देखो मारणांतिक में जो जितने मोड़ है उतने फैले रहते हैं प्रदेश, तो मारणांतिक में तो पूरे ही काउंट करना है। अब उपपाद में हम तीन अलग अलग है, एक तो उपपाद ऐसा कि बस यहां से यहां आया और उसने इतना ही ट्रैवल किया, एक समय में इतना ही ट्रैवल किया। अब यहां भी हम लेते हैं इसने एक समय में कितना ट्रैवल किया, एक समय में तो इतना ही गिनेंगे, नहीं दो मोड़ वाला ले ही नहीं सकते हम। दो मोड़ हो किसी भी जीव के, दो तीन कितने भी मोड़ हो, एक समय में तो एक ही लेंथ हम ले सकते हैं, तो जो मैक्सिमम लेंथ है उसको लेंगे। जैसे मारणांतिक में कैसे लेते हैं, ऐसा किया फिर ऐसा गया फिर और ऐसा अंदर गया, और फिर वो जब उपपाद गिनना है तो इसमें से पहले, हाँ उपपाद नहीं, ये जो हम उपपाद का क्षेत्र निकालना है तो ही ये पर उपपाद का निकालना है तो, परंतु जीव इतना ऊपर ट्रैवल करके आया उसके बाद उसका दूसरा समय चलेगा, एक समय में उसने इतना ही ट्रैवल किया, दूसरे समय में वो इतना ट्रैवल करेगा। हाँ एक समय में ही उसका यहाँ हो जाता है, और फिर ये प्रदेश फैले रहते हैं, उस समय उसके प्रदेश फैले हुए हैं, उसको ले सकते हैं। जिसने तो ऑलरेडी मारणांतिक करके उपपाद किया है उसके प्रदेश फैले हुए हैं, हाँ उसके प्रदेश फैले, उसका एक निकाल देना उसमें ये प्रदेश फैले हुए है। एक ही समय उसका वो पहला समय है, परंतु उसने पहले समय में यहां से ये निकाल लिए, फिर दूसरे समय में ऐसा जाएगा, तीसरे समय में ऐसा चला जाएगा, उसको ले सकते हम। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, उनका कहना है जिसने मारणांतिक किया है, अब मारणांतिक किया है तो उसके ऐसे प्रदेश फैले हुए हैं ऑलरेडी, अब उसका मरण हुआ तो क्या हुआ, उसका इतना रहा बाकी, इतना उसके फैले हुए है पहले ही समय में, इसके पहले ऑलरेडी फैले हुए हैं, तो उसे एक समय में ये मोड़ ये समेट लिए, दूसरे समय में इसको समेट लिया, तीसरे समय में इसको समेट लिया। हाँ बिल्कुल, फिर भी वहां ऐसा ना एक समय में यहाँ समेट लिया है उसने, एक समय में वहां यहाँ पहुंच गया, वो पहला समय है उसका, परंतु उसके प्रदेश ऐसे फैले हुए है ना वहां पर, मारणांतिक उसके आंखें रेस नहीं करता है, नहीं ये दो है, हमने तो ऐसे समझते थे, नहीं नहीं ऐसे मारणांतिक किया उसके प्रदेश फैल आ गए, फिर उसके एक अंतर्मूर्त बाद उसको मरण हुआ, ऐसा नहीं है। मारणांतिक किए हुए प्रदेश फैले रहते हैं और फिर यहाँ से उसके एक एक मोड़ से एक एक में निकाल लेता है। दो प्रकार के इसमें कथन आते हैं, कैसे एक ने ऐसे छलांग मारी, उसका एक पैर यहाँ पर है और एक सामने के पत्थर पर रखा, और उसने यहाँ का पैर उठा लिया, या यहाँ पहले छलांग मारी थी वो निकाल लिया फिर यहाँ से जम करके आगे गया, ऐसे दोनों ही कथन आते। हाँ हमने तो ऐसे ही समझा था अभी तक, परंतु ये कथन खास धवला में मिला हमको। ये जो है ना सारे मारणांतिक वगैरह, ये 10 प्रद वगैरह, ये लेशा मार्गणा में बहुत विस्तार से कथन है इसका समय, और समझाया भी बहुत अच्छा। देखो तो ये कहते हैं कि जो अलग अलग नरकों की अपेक्षा भी वो लोक का असंख्यात भाग है। इसी प्रकार अतीत काल की अपेक्षा, अभी अतीत काल की अपेक्षा, वर्तमान काल की अपेक्षा बता दिए, मारणांतिक में तो असंख्यात से गुणा करना है और उपपाद में एक समय में ही घटित करना है। अतीत काल की अपेक्षा स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और वैक्रिक पदों को प्राप्त सामान्य नारकियों का स्पर्शन क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यह मारणांतिक और उपपाद को छोड़ दिया है, इनके अलावा जो है वो लोक का असंख्यात भाग ही होता है। पर मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए सामान्य नारकियों का स्पर्शन देशों ने 6/14 राजु प्रमाणे, अब 6/14 देखा है वो सातवीं नरक की अपेक्षा कहा, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा अतीत काल में देशों ने 3000 योजन कम अनुपूर्वी के योग्य मध्य लोक से लेकर सातवें नरक तक के सभी क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये नीचे की जो पृथ्वी है उसको छोड़कर 3000 योजन कम किया, विशेष दो हजार कहां से कम किए, ये अनुपूर्वी के योग्य किसको कहते हैं? हाँ, अनुपूर्वी का उदय कब होता है? विग्रह गति मोड़ वाली विग्रह गति में, हाँ इसलिए अनुपूर्वी के योग्य कहा। विशेष रूप से विचार करने पर पहले नरक के स्पर्शन और क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है, अर्थात पहले नरक का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक का असंख्यात भाग प्रमाण जानना चाहिए, यानी वो कथन दोनों में सेम होगा, लोक का असंख्यात भाग, क्यों? क्योंकि वो राजू का असंख्यात भाग है ना, उसकी हाइट यानी उस कितना नीचे है पहला नरक, तो राजू का असंख्यात भाग है, तो पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो भी वो लोक का असंख्यात भाग होगा। द्वितीय आदि नरकों में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद उपवाद हुआ, उपपाद की अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्शन का कथन करते समय मध्य लोक से उस नरक भूमि तक जितने राजू हो देशों ने उतना स्पर्शन कहना चाहिए, क्योंकि नीचे तल तक तो नरक के बिल नहीं होते इसलिए देशों ने कहा। शेष पदों की अपेक्षा स्पर्शन ओघ के समान है। अब तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन, इसमें अविभक्ति का सवाल ही नहीं है, तो सभी मोहनीय के विभक्ति वाले हैं, उनका स्पर्शन क्षेत्र के समान जानना चाहिए। जब तिर्यंच कहते हैं तो क्षेत्र कितना है? पूरा लोक, तो स्पर्शन में कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। हमेशा हमने क्या देखा, क्षेत्र जो होता है उससे स्पर्शन बढ़ जाता है क्योंकि अतीत काल की लेते हैं। तो अभी इसमें बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे लोक में ही है ना अनंत, लोक के बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। हाँ। जैसे हमने यहाँ क्षेत्र में नारकियों में क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यात भाग, सातवें नरक का भी कितना है क्योंकि वो उतने उतने क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पर? बाहर तो फैल ही नहीं सकते उसका वेदना भी इधर की ओर ही फैलेगा नहीं, उसके लिए अपवाद नहीं होगा तो हम नारकियों में जब कैलकुलेट करते हैं तो मारणांतिक और उपपात तो पूरा वहां से नीचे तक का हम क्षेत्र उसको कैलकुलेट करते हैं, पर हम यहाँ मारणांतिक भी करें तो कहाँ करेंगे, रूपपात भी करेंगे तो लोक से बाहर तो जाने नहीं, तो स्पर्शन भी और क्षेत्र भी उतना ही है पूरा लोक। एक्सट्रीम एज पर वही नौ गुना उसका नहीं, वो नीचे की ओर ही बढ़ेगा अरे वेदना क्यों नहीं होगी नौ ग्रहवेग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों का स्पर्शन भी इसी प्रकार अर्थात क्षेत्र के समान जानना चाहिए। ये बीच में देवों का क्यों लिया? स्पर्शन और क्षेत्र समान है ऐसे ये स्टेटमेंट कौन सी समानता है? क्षेत्र और स्पर्शन जिनका समान है उसको बताया। कितना है उसका क्षेत्र बोलो? लोक का संख्या तो तथा सर्व एकेंद्रिय पृथ्वीकायिक बादर पृथ्वीकायिक बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त अपकायिक बादर अपकायिक बादर अपकायिक अपर्याप्त अग्निकायिक बादर अग्निकायिक बादर अग्निकायिक अपर्याप्त वायुकायिक बादर वायुकायिक बादर वायुकायिक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, बीच में कॉमा लगाना अपकायिक के बाद, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकायिक फिर कॉमा सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त। सूक्ष्म में तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए। सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त वनस्पतिकायिक बादर वनस्पतिकायिक बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त निगोध बादर निगोध पर्याप्त बादर निगोध अपर्याप्त सूक्ष्म निगोध पर्याप्त सूक्ष्म निगोध अपर्याप्त फिर औदारिक कायोगी औदारिक मिश्र कायोगी वैक्रिक मिश्र कायोगी आहारक कायोगी आहारक मिश्र कायोगी कार्मण कायोगी नपुसक वेदी क्रोध मान माया और लोभ इन चारों कषाय वाले मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी मनपरे ज्ञानी सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्राय संयत असंयत अचक्षुदर्शनी कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि असंज्ञ और आहारक जीवों के स्पर्शन का कथन क्षेत्र के समान करना चाहिए। कितना है वो सब देखो यह कितना क्षेत्र है उसमें समानता नहीं है, उनका अपना अपना जो इतना क्षेत्र है उतना अपना अपना स्पर्शन है, ये बात बता रहे हैं। मन परिज्ञानियों का जितना क्षेत्र है उतना ही स्पर्शन है, ये बात यहां बताना चाहते हैं। क्योंकि अभी नपुसक वेद कहेंगे तो पूरा लोक है और स्पर्शन भी उतना, क्षेत्र भी उतना, अपनी अपनी मार्गणा में जितना क्षेत्र है उतना ही स्पर्शन है, स्पर्शन और क्षेत्र में अंतर नहीं है, ये बात बताना चाह रहे। जैसे हमने नारकी में क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग देखा और स्पर्शन 6/14 राजू देखा, वहां जो वेरिएशन थी वैसी वेरिएशन यहां नहीं है, ये बात बताना चाहते। नारकियों में क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यातवा भाग अभी हमने देखा ना, और स्पर्शन कितना है तो 6/14 राजू। ये स्पर्शन और क्षेत्र में जो वेरिएशन हुआ, ऐसा वेरिएशन इन लिस्ट वालों में नहीं है। लिस्ट में तो जो मेजॉरिटी हम एक इंद्रियों की देखी, वहां तो पूरा लोक स्पर्शन भी है और क्षेत्र भी है। हाँ, अब ये थोड़ा दूसरा लेते हम, ये वैकृत मिश्र काय योगियों का कितना होगा क्षेत्र, लोक का संख्या तो भाग, और उसका स्पर्शन भी लोक का संख्या तो भाग। क्यों, मिश्र काय योगी में कौन से पद होंगे हमने देखे ना अभी। हाँ, मिश्र काय योगियों में कौन कौन से पद होंगे, मारणांतिक समुद्घात होगा क्या, वैकृत मिश्र कब होगा, यहां से जीव गया है और वहां शरीर धारण करना शुरू कर दिया उसने, तो उस अवस्था में ना विक्रिया करेगा, नहीं नहीं वो तो आहारक केवल तेजस की तो बात ही नहीं, उसमें उनमें तो होते ही नहीं, परंतु मारणांतिक और उपपाद भी है कि नहीं वहां पर, ख्याल है ना क्या कहना चाहते हैं। तो उसका स्पर्शन कहो या क्षेत्र कहो एक ही होगा, जहां मारणांतिक है उसकी अपेक्षा स्पर्शन बढ़ जाता है, उपपाद की अपेक्षा स्पर्शन बढ़ जाता है, पर इनमें वैकृत मिश्र कब शुरू होगा, किसी भी गति से आने दो, वैकृत मिश्र कब है वहां पहुंचा तब, ख्याल में है ना, जब उपपाद में था तब वैकृत मिश्र नहीं था, उसको कारमण का योग था, या नहीं भी होगा रुजुगति से पहुंचने वाले का, वहां पहुंचने पर मिश्र शुरू हो गया उसको, रास्ते में कहां वो एक ही समय में पहुंच भी गया और मिश्र शुरू भी हो गया। वायु कायिकों में विक्रिया करने वालों को वैकृत मिश्र नहीं होगा, उनको विक्रिया डायरेक्ट वैकृत काय होगा ना, क्या वैकृत मिश्र होता है, वो कारमाण होगा, कारमाण होगा तो हो जाता है ना, बीच में कारमाण होता है तो मिश्र अवस्था होती है। हा? जैसे आहारक के किए उसने आहारक मिश्र, हाँ वैकृत मिश्र होगा। देव नारकियों में तो बात अपनी करे चलेगी, वैकृत मिश्र की बात नहीं, विक्रिया करने वालों को वैकृत मिश्र नहीं, कौन सा औदारिक और विक्रिया का वैकृत का वैकृत मिश्र होता है, जब कारमान की बात आती है तभी वो मिश्र वाला आता है बीच में। तो यहाँ इतनी बात है, जितना स्पर्शन है उतना ही क्षेत्र है, ये जो अलग अलग बातें अभी विशेषार्थ में कुछ अलग बताना चाहते तो देखेंगे, मैं भी आप ही के साथ पढ़ रही हूँ। देखो, इन उपर्युक्त मार्गणा स्थानों में स्पर्शन सामान्य से अपने अपने क्षेत्र के समान जानना चाहिए, सामान्य की बात स्थूल अपेक्षा जितना स्पर्शन है उतना ही उसका क्षेत्र है। तिर्यंचों में क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना ही है, क्योंकि लोक के बाहर तो स्पर्शन बढ़ेगा नहीं। नव ग्रवेकों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। सर्व एकेंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना ही है। ऊपर कहे गए पृथ्वी कायिक जीवों से लेकर सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीवन तक का क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना है। हमने देखी ना ये लंबी चौड़ी लिस्ट, ऊपर अभी इसी पेज पर देखो, 4-5 लाइन में सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त था, वहां तक की लिस्ट उन्होंने बता दी। अब अवतारिक काय योगी और अवतारिक मिश्र काय योगी जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना है, क्योंकि सभी सभी जीव ले ना, सूक्ष्म जीव अवतारिक भी है, अवतारिक मिश्र भी है। उपक, हाँ, चौथी लाइन में ऊपर कहे गए क हो गया, उसको र करना। विशेषार्थ की चौथी लाइन में जहाँ ऊपर कहे गए लिखा है ना, उपक हुआ है वहां पर। अभी हम वैकिरेक की बात करेंगे। यहाँ पर वैकिरेक मिश्र कायोगियों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। हमने देखा आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कब होता है? आहारक काय के पहले, परंतु उसका विहार नहीं है, उस जिस क्षेत्र में जीव स्थित है वहीं पर उसका मिश्र है। आपको वायु कायिक का लेना है तो जहां पर है वहीं पर मिश्र भी होगा, यदि होगा तो उसका क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। कार्मण काय योगी चारों कषाय वाले मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानियों का क्षेत्र सर्वलोक है, समझे? क्योंकि वो तो कार्मण काय योग पूरा यानी मरकर जो जाने वाले मोड़ से पूरे लोक में है फैले हुए, एक इंद्र तो है ही, ये सभी का पूरा लोक है, स्पर्शन भी इतना है। मनपर्य ज्ञानी से लेकर सूक्ष्म सांप्राय तक संयत जीवों तक का क्षेत्र, ये ऊपर की लिस्ट में मनपरिज्ञानी सामायिक छदोपस्थापना परिहार विशुद्धि और सांप्राय संयत तक लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। क्योंकि इनमें तो कोई उपपाद और मारणांतिक का सवाल नहीं है। मारणांतिक होगा, परंतु वो तो संख्यात जीव है ना। स्वर्ग में जाएंगे तो उपपाद होते समय उनकी ये मार्गणा नहीं रहेगी। हाँ, स्पर्शन भी इतना ही है। असंयत से लेकर, वो कॉमा नहीं चाहिए असंयत के बाद, असंयत से लेकर, ये अपनी ऊपर की लिस्ट में, असंयत से लेकर आहारी पर्यंत यानी असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण नील कापोत लेशा वाले, अभव्य मिथ्या दृष्टि, असंग्य और आहारक जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना ही है। इन उपर्युक्त सभी मार्गणाओं में विशेष पदों की अपेक्षा स्पर्शन में क्षेत्र से जहां जो विशेषता हो वह स्पर्शन अनुयोग द्वार से जान लेना चाहिए। यानी जिस पद की अपेक्षा यानी मारणांतिक हो उसकी अपेक्षा यदि वहां कोई डिफरेंस होता है तो वहां वो जान लेना चाहिए। जैसे सामायिक छेदोपस्थापना वाला वो मारणांतिक समुद्घात करेगा, और मारणांतिक समुद्घात ऊपर के ग्रहों तो या ऊपर भी चला जाएगा तो उसका जो कुछ क्षेत्र बढ़ेगा उसको भी ख्याल लेना चाहिए। इतनी बात बताते हैं। जिसका सर्वलोक है उसमें तो कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है, वो अन्य में विशिष्ट पद की अपेक्षा हो सकता है उसका डिफरेंस, वो वहां जान लेना। आगे सर्व पंचेंद्रिय तिर्यंचों में, ये तिर्यंच की बात पहले उठा ली ना उन्होंने, तिर्यंच गति की निकाली थी, अब वहां पंचेंद्रिय तिर्यंचों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवन ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श किया है। विशिष्ट पद की अपेक्षा सर्वलोक कहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त, त्रस लब्धि अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर अप का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों के स्पर्शन का कथन करना चाहिए। ये जो लोक का असंख्यातवा भाग और सर्वलोक, ये जो कथन है वो इन सभी में लागू होता है। विशेषार्थ पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच, योनिमति पंचेन्द्रिय तिर्यंच और लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंचोने वर्तमान में, ये वर्तमान की बात है, अपने अपने संभव पदों के द्वारा, संभव पद यानी वो जो हमने देखे यहाँ पर, जो कुछ उनमें स्वस्थान स्वस्थान आदि जो पद वहां हो सकते हैं, इसलिए अपने अपने संभव क्यों कहा, ये तो तेजस समुद्रात आहार समुद्रात केवली समुद्रात तो वहां नहीं होगे, इसलिए अपने अपने संभव पद कहा। उसके द्वारा लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। इन्हीं चारों प्रकार के तिर्यंचों ने अतीत काल में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय भी हो तो मरकर तो एकेंद्रिय में भी जा सकते हैं, या एकेंद्रिय जीव मरकर उपपाद की अपेक्षा इनमें आ सकते हैं, तो इनका उपपाद में तो उनको पंचेंद्रिय कहेंगे, तो पूरा ही लोक स्पर्शन की अपेक्षा आता है उसका, क्योंकि इन दोनों पदों की अपेक्षा इनका त्रसनाली के बाहर भी सर्वत्र सद्भाव देखा जाता है। त्रसनाली के बाहर त्रस जीव कब पाए जाते हैं, मारणांतिक की अपेक्षा या उपपाद की अपेक्षा। बाहर वाले जीव मरकर वहां मर गए तो अभी वो सूक्ष्म नहीं रहे, पंचेंद्रियपना उनका चालू हो गया, वो जीव पंचेंद्रिय कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, विग्रह गति में पहले ही समय से जैसे वहां से मरकर कोई जीव मनुष्य में जन्म लेने वाला है, उसको मनुष्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ख्याल नहीं है, आपका क्या ख्याल है? अभी अभी हमारी एकेंद्रियों की छोड़ दो, हम मर गए यहां और देव में उत्पन्न होने वाले हैं, तो विग्रह गति के पहले समय में क्या कहलाएंगे? अभी बीच में देव का शरीर नहीं धारण किया है, देव जीव कहलाएंगे ना कि नहीं, कि मनुष्य कहलाएंगे? स्पष्ट, अभी मर गए तो मनुष्य आयु समाप्त हो गई और देवायु का प्रारंभ हो गया, तो उसको देव कहेंगे कि क्या कहेंगे? निर्णय तो करना पड़ेगा, मालूम नहीं तो मालूम करना पड़ेगा, और निर्णय से मालूम, मैंने कहा या इसमें लिखा इसलिए नहीं, मनुष्य आयु तो यही समाप्त हो गई।
देखो अभी हम ऐसा देखते हैं, आपने 100 वर्ष की मनुष्य आयु बांधी है, 100 वर्ष पूरे हो गए और आपने आगे के भविष्य में देव की आयु बांधी है, तो यहाँ मनुष्य आयु खत्म हुई तो देव आयु चालू होने में कितने घंटे लगेंगे? तुरंत अगले समय में तो अगले समय में तो आप अभी ट्रांजिट पीरियड में विग्रह गति में, तब आपको कौन सा जीव कहेंगे? देव जीव कहेंगे। वैसे ये मारणांतिक समुद्घात में और उपपाद की अपेक्षा से ये पंचेंद्रिय जीव त्रस नाली के बाहर भी पूरे लोकल
पंचेंद्रिय कहेंगे तभी। तो कहीं से भी मरकर पंचेंद्रिय में आने वाले है तो वो त्रस नाली के बाहर है ना, उपपाद अवस्था में। वो एक समय में अंदर आ जाएंगे, फिर दूसरे समय में उसको तो पंचेंद्रिय तो इन्हें त्रस नाली के अंदर आ गया वो। दोनों पद है ना, मारणांतिक पद और उपपाद पद, क्योंकि यहाँ से मारणांतिक समुद्घात करते हैं, अभी कोई सूक्ष्म में एकेंद्रियों में कहीं जन्मने वाला है वहां तक प्रदेश फैले रहते हैं, तो वो त्रसनाली के बाहर गए ना उसके प्रदेश, अभी वो जीव यहाँ तिर्यंच में है, पंचेंद्रिय तिर्यंच कहलाता है। मारणांतिक जब कर रहे है, नहीं अभी मैं पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात कर रही है, पंचेंद्रिय तिर्यंच अभी कोई पृथ्वी का एक हो रहा है, कोई भी ले लो सूक्ष्म जो त्रस नाली के बाहर है, तो यहाँ उसने मारणांतिक किया समुद्घात, अभी मरण को असंख्यात समय बाकी है और उसके प्रदेश कहाँ फैले हैं? त्रस नाली के बाहर, तो वो उसके वो जो प्रदेश फैले हैं उसको क्या कहेंगे? वो जीव ही कहेंगे ना, जीव के प्रदेश तो कंटिन्यूस होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ प्रदेश गए और ये शरीर से छूट कर गए, ऐसा बात नहीं है, वो तो ये मूल शरीर में भी है और बाहर ही फैले हैं, तो वो जीव पंचेंद्रिय होते हुए भी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा त्रस नाली के बाहर है। तो त्रस नाली के बाहर सर्वत्र सद्भाव देखा जाता है, ऐसे कितने ही कर रहे हैं ना, मारणांतिक भी और उपपाद भी, पूरा लोक भरा है। तथा अतीत काल में शेष पदों के द्वारा, शेष पद कौन से, वो स्वस्थान आदि जो अन्य पद है उसके द्वारा उक्त चारों प्रकार के तीर्यंचों ने कौन से चार लिए, पहले लाइन में देखा था पंचेंद्रिय तीर्यंच, पर्याप्त पंचेंद्रिय तीर्यंच, योनिमति पंचेंद्रिय तीर्यंच और लब्ध्य पर्याप्त पंचेंद्रिय तीर्यंच। तो कितना क्षेत्र व्यापा है स्वस्थान वगैरह अपेक्षा से, तो कहते हैं लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, जिसका सव लोगों वा में आए हुए वा पद से समुच्चय कर लेना चाहिए, यानी मारणांतिक समुदाय की अपेक्षा सर्वलोक और वा कहने से स्वस्थान आदि पद की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग। ये सब वो लोगों वा कहाँ लिखा है, ऊपर प्राकृत में नीचे से दूसरी लाइन, वा शब्द में वो दूसरा भी विकल्प समान। लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों से लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तक के जीवों के स्पर्शन में इन उपर्युक्त तीर्यंचों के स्पर्शन से कोई विशेषता नहीं है, इसलिए तीर्यंचों के स्पर्शन के समान ऊपर कहे गए शेष मार्गणा स्थानों में भी स्पर्शन समझना चाहिए। स्पर्शन की अपेक्षा वो भी मरकर कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पंचेंद्रिय तीर्यंच है और अन्य सूक्ष्म आदि जीव भी उनमें आकर उत्पन्न हो सकते हैं, उस अपेक्षा स्पर्शन तो पूरा लोक मारणांतिक उपवाद की अपेक्षा और स्वस्थान आदि की अपेक्षा लोक का असंख्यात्वा भाग। बादर वायु का एक पर्याप्तकों में इसको अलग निकाला, मोहनीय विभक्ति वाले जीवों ने वर्तमान में लोक का संख्यात्वा भाग प्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श किया है। रहने का कहां तक है, वो पांच राजू वाला, पांच राजू गुना एक राजू गुना एक राजू, यानी पांच घन राजू या 5/14 ऐसा कहते हैं, 5/14 राजू, और वो कितना होता है 343 का संख्यात्वा भाग हो जाता है, इसलिए संख्यात्वा भाग का। और मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा पूरा लोक विशेषण। हाँ, इसको अलग निकालने के लिए, क्योंकि बाकी सब जीवों में हमने लोक का असंख्यात्वा भाग कहा था और इनमें लोक का संख्यात्वा भाग, ये विशेषता है। बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों का वर्तमान क्षेत्र का विचार क्षेत्र प्ररूपणा में किया है, अतः वहां से जानना, तथा अतीत काल में उक्त जीवों ने मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि अतीत काल की अपेक्षा इनका सर्वलोक में गमन और लोक के किसी भी भाग से आकर अन्य जीवों का इनमें उत्पन्न होना संभव है। मरकर ये कहीं पर जा सकते हैं और कहीं से मरकर इनमें आ सकते हैं, तथा अतीत काल में शेष पदों के द्वारा इन जीवों ने लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र का ही स्पर्श किया है। बाकी के जीवों में हमने असंख्यात्वा भाग कहा था, इनमें संख्यात्वा भाग कहा, जिसका सब लोगों वा में आए हुए वा पद से समुच्चय कर लेना चाहिए। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियों में मोनीय विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन पंचेंद्रिय तीर्यंचों के स्पर्शन के समान है, कितना है लोक का असंख्यात्वा भाग, तथा मोनीय अविभक्ति वाले उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों का स्पर्शन ओघ के समान है। क्या है ओघ, लोक का असंख्यात्वा भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक, ये तीनों विकल्प है मोहनीय के अविभक्ति वाले। विशेषण, पंचेंद्रिय तीर्यंच, अविभक्ति की बात चल रही, पंचेंद्रिय तीर्यंचों का स्पर्शन लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण और सर्वलोक कहे आए हैं, वही मोहनीय कर्म से युक्त उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों का समझना चाहिए। इन्हें मनुष्यों में भी सर्वलोक ये समुद्घात और मारणांतिक की अपेक्षा से उनमें भी हो सकता है, अब कहते मोहनीय कर्म से रहित की बात है अभी। उक्त तीनों प्रकार के मनुष्यों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वलोक जानना चाहिए। ये कहाँ की बात की है उन्होंने? मोहनीय की अविभक्ति समुद्घात के लिए, समुद्घात की अवस्था में, देवगति में। ये मनुष्य गति की बात अभी बता चुके, अभी देवगति में करेंगे। देवों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात भाग, ये वर्तमान की बात। देशों ने 8/14 राजू बटे हुआ, बटे करना, और देशों ने 9/14 राजू क्षेत्र स्पर्श किया है। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों का स्पर्शन इसी प्रकार कहना चाहिए। ये सामान्य देवों की बात की, वही बात सौधर्म ऐशान की भी की, क्योंकि वे ही एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं। ये जीव नीचे तीसरे नरक तक गमन करते हैं, तो 2 राजू नीचे गए और ऊपर 8वीं पृथ्वी का एक, पृथ्वी के पृथ्वी का एक होकर जन्मेंगे, तो वो इतना 7 राजू ऊपर गए। वहां जाने के बाद वहां से मारणांतिक किया, उस अपेक्षा से 9/14 राजू होता है। और विहार करके नीचे तक जाते हैं। देखो यहाँ स्पर्शन की बात है, जब क्षेत्र की बात करेंगे तो लोक का असंख्या तो भाग, क्यों? क्योंकि देवों की संख्या जैसे हमने नारकियों में कैलकुलेट किया वैसे देवों में भी कर सकते हैं। फिर भी उनका स्वस्थान है, विहार वत सब कुछ जो अभी ले लेते हैं तो भी कितना है लोक का असंख्यात भाग। मारणांतिक की बात करेंगे तो मारणांतिक में ऐसा लेना कि अभी मारणांतिक की बात बाद में करेंगे। विहार करके कहाँ तक जा सकते हैं? तीसरे नरक। तीसरा नरक कितना नीचे है? 2 राजू। और कहाँ तक के देव नीचे जाते हैं? तो 6 राजू ऊपर के, 2 राजू नीचे तक जाते हैं, यानी 8/14 राजू उनका क्षेत्र हो जाता है स्पर्शन। 8/14, हाँ, तो 8/14 तो समझ में आए। स्पर्शन में सभी जीव लेना, इतने काल के जीव लेना अनादि से, तो ये पूरा ही उतना घटित हो जाता है। वर्तमान में कुछ गिने चिने जीव है इसलिए लोक का असंख्या तो भाग ही होगा, परंतु अतीत काल कहते हैं तो पूरा ही 8/14 हम ले सकते हैं। अब हमें 9/14 कैसे होता है? तो हमने देखा है भवनत्रिक और सौधर्म ईशान मरकर पृथ्वी कायिक में जाते हैं, बादर पृथ्वी कायिक में, एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। तो वहां विहार करके नीचे गए हैं, कहां? तीसरे नरक में, 2 राजू नीचे गए, और वहां जाते हुए वहां से मारणांतिक किया। हाँ, तो कहां मारणांतिक होता है? तो मारणांतिक वो ऊपर की ओर ही होता है पृथ्वी कायिकों में। तो कहां के पृथ्वी में जन्मे? हमें ऊपर की पृथ्वी लेते हैं। मैक्सिमम दूरी कौन सी है? 8वीं पृथ्वी, जिसको कहते हैं ईशत प्रागभार। वो कहां पर है? 7 राजू ऊपर है, सर्वार सिद्धि के ऊपर है ना, सिद्धशिला जिसमें है, वो पूरी पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी। तो देव में से वहां एकेंद्री होने के लिए मारणांतिक समुद्घात किया। तो उसके प्रदेश कितने राज्यों में फैले हैं? 9 राज्यों में, इसलिए उसको 9/14 लिया। अभी विशेषार्थ, 9/14 14 राज्यों में से 9 राज्यों। वो भी घन रूप लेना उसको। विशेषार्थ, देवों ने वर्तमान काल में स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना कषाय वैक्रिक मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वर्तमान में मारणांतिक की भी अपेक्षा वो 8/6 9/ वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्तमान में तो एक समय की बात जो है घटित होती है, तो उसमें वो असंख्या से गुणा करेंगे तो भी इतना ज्यादा क्षेत्र नहीं होगा। स्वस्थान स्वस्थान पद की अपेक्षा अतीत काल में भी लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्वस्थान यानी रहने की जगह उनके, वो भी लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में ही रहते हैं। तो भले जीव अनंत हो जाएगी फिर भी उनके देवों के विमान वो जो है वहीं पर है, उनमें क्षेत्र को बढ़ने वाला नहीं है, तो उसको भी निकाल दिया। तथा अतीत काल में विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रिक पदों की अपेक्षा देशों ने 8/14 राजू प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। अब यहाँ जो विक्रिया करके नीचे चले जाते हैं, उस अपेक्षा से एक क्षेत्र 8/14 कहा, क्योंकि नीचे तीसरी पृथ्वी तक और ऊपर अच्युत कल्प तक देवों का विहार देखा जाता है। अच्युत कौन से नंबर का है स्वर्ग? हाँ, 16 आरण अच्युत है ना, आनत प्राणत आरण और अच्युत। तो 16वें स्वर्ग तक कौन से जीव जाते हैं? हाँ, देखो देखो ऐसा है ना, अभी ये विहार करके जो जाते हैं अपने अपने स्वर्ग के ध्वज दंड तक स्वयं जाते हैं, ये जो भवनत्रिक वगैरह जो मिथ्या दृष्टि की बात आती है, और ऊपर दूसरे लेकर जाएंगे उनको तो जा सकते हैं, दूसरे वहां के देव आकर उनको ले जाते हैं तो वो जा सकते हैं, स्वयं अपने गमन से तो वहां स्वधर्म तक जाते हैं, ये भवनत्रिक की बात है, स्वयं जाते हैं तो स्वधर्म ईशान तक जा सकते हैं और बाकी देव ले जाते तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यहाँ देशों से तीसरी पृथ्वी के अंतिम 1000 योजन मोटे क्षेत्र का और देवों के द्वारा अगम्य प्रदेश का ग्रहण किया है। देशों ने ना, तो देव जहां नहीं जा सकते ऐसे लिए। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा देशों ने 9/14 राजू प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात में देवों का मध्य लोक से नीचे 2 राजू और ऊपर 7 राजू, इस प्रकार 9 राजू प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श देखा जाता है। यहाँ तो उन्होंने नहीं बताया, परंतु गमन करके नीचे गए हैं तेज तीसरे नरक में, और वहां से उन्होंने पृथ्वी कायिक में जन्म लेने वालों ने ऊपर 7 राजू तक मारणांतिक समुदाय किया, नीचे 2 राजू जाकर ऊपर तक किया, तो 9 राजू तक फैले है प्रदेश। उपपाद पद की अपेक्षा देशों ने 6/14 राजू प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। यद्यपि मध्य लोक से नीचे अब बहुल भाग तक और ऊपर अच्युत कल्प से आगे 7वीं राजू में भी देवों का उपपाद देखा जाता है। क्या कहते, देव तो नीचे भवनवासी भी है और ऊपर स्वधर्म तक सभी है, फिर भी वह सब मिलाकर देशों ने 6/14 राजू से अधिक क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र देवों का उत्पाद अनुपूर्विगत प्रदेशों के अनुसार ही होता है। स्वधर्म और ईशान कल्प के देवों का स्पर्शन उपपाद को छोड़कर बाकी सब सामान्य देवों के स्पर्शन के समान ही है। उपपाद में वो एकेंद्रियों का वो उपपाद ले सकते हैं उसमें। अब अलग अलग, ये तो सामान्य देवों में बात की उन्होंने, मुनि विभक्ति वाले ये तो ये कल पढ़ेंगे, 3 लाइनें, अच्छा विशेषात कल पढ़ेंगे। मोहनीय विभक्ति वाले भवनवासी वानव्यंतर यानी व्यंतर और ज्योतिषी देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यातवा भाग, ये वर्तमान की अपेक्षा कुछ कम 3/14 राजू, ये स्वयं विहार करके जाते हैं तो नीचे है, और कुछ कम 3/14 राजू और कुछ कम 8/14 राजू, कोई अन्य देव ले जाए तो, और कुछ कम 9/14 राजू, ये मारणांतिक करेंगे तो क्षेत्र स्पर्श किया है। अब इसका जो विशेषार्थ है वो कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। मयंग भाई।